का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं पंकज मित्र की लिखी कहानी जिद्दी रेडियो। लीजिए सुनिए पंकज मित्र की लिखी कहानी जिद्दी रेडियो। दूसरे लोगों के लिए जो आवाज सिर्फ एक खटकी थी, स्वप्नमय बाबू के लिए इसी आवाज भर से यह बता देना आसान था कि यहाँ पर कैपिटल एच की जगह स्मॉल एच टाइप हो गया है और ऑनरेबल कोर्ट ऑफ फला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऑनरेबल का एच स्मॉल से लिखा जाए। हो तो यहाँ तक सकता है कि इसी गलती पर भन्नाकर बेचारे मुवक्किल की जमानत की अर्जी ही ना मंजूर करते। इन स्थितियों से बचने के लिए विशेषज्ञता की जरूरत थी और यह विशेषज्ञता वैसे ही नहीं आ गई थी। बरसों की मेहनत कहिए या तपस्या का फल थी कि कचहरी परिसर में नकल खाना के सामने लंबे बरामदे पर बैठे सैकड़ों खटखटा खट खटखटा खट की आवाजों के बीच भी अपनी एक गलत खट की आवाज को वैसे ही पहचान लेते थे जैसे शास्त्रीय संगीत का कोई पारखी सैकड़ों सुरों की भीड़ में से एक गलत सुर को पहचान लेता। सैकड़ों हजारों खटाखट की आवाजें जिसे वे ताल कचहरी कहते थे किसी बड़े ऑर्केस्ट्रा के सम्मिलित संगीत से भी ज्यादा मधुर लगती थी उन्हें, क्योंकि इसी पर टिका था उनके पूरे महीने का संगीत। आटा, चावल, दूध, चीनी, चाय, बच्चों की किचकिची फरमाइशें, पीस, खटाक, विवादी स्वर से उनकी सोचने की लय टूटी थी। जरूर चाय छलक कर गिरी होगी टेबल पर, जिससे हाथ को बचाते हुए अब चाय का गिलास अंदाज से उठाना था उन्हें, नहीं तो कुर्ते की आस्तीन चाय में लिसड़ जाने का खतरा था और उन्हें बड़ा लिचलिजा लगता था यह एहसास। हल्की सी खट से जोर किसके खटाक तक की यह यात्रा कई वर्षों में पूरी हुई थी। चाय का गिलास कभी भी बे आवाज नहीं रख पाती थी वे। शादी के कुछ दिनों बाद ही जब इस बात पर ध्यान दिलाया था तो क्या हुआ, पोछ देती हूं, एक दो बूंदे ही तो छलकी हैं। नहीं मतलब क्लाइंट्स के कागज पत्र रहते हैं, चाय गिरी रहेगी तो खराब हो सकते हैं ना। मेज पर के कागज पत्रों की संख्या जैसे जैसे कम होती गई उसी अनुपात में यह आवाज खट से होकर खुट और अब तो खटाक। अब तो कागज पत्र रहता नहीं है। इसी खटाक की आवाज के साथ ही रेडियो पर सुबह 6:05 का समाचार आने लगता था। सुबह का पहला गर्मा गर्म समाचार गर्मा गर्म चाय के साथ। यही विरासता थी स्वप्नमय बाबू की, जो धीरे धीरे जिद में बदलती गई थी। शुरू शुरू का टोकना भी कब बंद हो गया पता ही नहीं चला, जब स्वप्नमय बाबू ने अपने पिता की रौब दाब वाली कहानी पत्नी को सुनाई कि कैसे कपलेट बिना पोछे ट्रे में रखने पर नौकरों पर बरस पड़ते थे। सी क्लास का रास्कल है सब, कुछ मैनर सीखा ही नहीं। पत्नी ने सिर्फ एक तिक्त निगाह डाली थी और कहा था, हाँ हाथी चला गया जंजीर रहे। उधर समाचारों में अफगानिस्तान पर कारपेट बमबारी शुरू हो चुकी थी। इधर भी कब से बोल रहा है कि बाबू चलिए दिखा देते हैं शंकर नेत्रालय में, अब नया नया चीज आ गया है, ठीक भी तो हो सकता है आंख। लेकिन नहीं, क्या जो मिलता है, अंधा सांप की तरह संपत्ति पकड़ के बैठे रहोगे, जिंदगी भर जान खाया अभी भी नहीं छोड़ेगा, बस एक रट नहीं जाना है। अरे बेटा है, दुश्मन थोड़े ही है, लेकिन जान छोड़ दिया तो आदमी क्या। तुमको बेटा के साथ जाके घूमने फिरने का शौक है तो जाओ, हम मना थोड़े किए हैं, गई तो थी दार्जिलिंग, लौट के कहे आ गई 4 दिन में। अरे नहीं आते तो कौन देता रोटी बेल के, 3 जगह तो जला लिए हाथ, सोचता ही नहीं है कुछ, जिद की अकेले रह लेंगे, जिंदगी नरक कर दिए है। एक किक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, किसी जमाने में टाइपिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया गया यह जुमला याद आया उनको। इसी एक लाइन में ए से जेड तक पूरी वर्णमाला समा जाती थी। तब पता नहीं लेजी डॉग क्या करता होगा, क्यों क्यों करके चुप हो जाता होगा या मुकाबला करता होगा। उसका पाला अगर रोज किक ब्राउन फॉक्स से पड़े तो क्या संकल्प शक्ति बरकरार रख पाएगा वो। तभी रेडियो पर आज का चिंतन आने लगा था, संकल्प की शक्ति। मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है संकल्प, दृढ़ संकल्प एवं अटूट आत्मविश्वास के साथ। खट खुट खटा खट खटा
टिंग। पूरी षष्टि को इसी संगीत से भर देने की इच्छा होती थी। बला की तेजी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान कामयाब टाइपिस्टों में शुमार था उनका। जस मजिस्ट्रेट ने कितनी भी कठिन शब्दावली में आदेश क्यों ना पारित किया हो, कौन स्वप्न में बाबू वहां बैठते हैं नकलखाना के बरामदा पर बाएं से चौथे नंबर पर, रेमिंगटन की मशीन होगी, रेमिंगटन की। सामने के बाल थोड़े झड़ गए हैं लेकिन लंबी नाक पर 5 बजते ही उड़ जाएंगे। कागजों को समेट कर फाइल में और टाइप मशीन को काट के बक्से में डालकर हरक्यूलिस सर्कल के कैरियर, खास तरीके का बनवाया है कैरियर, प्लास्टिक के एक थैले में फाइलें ले जाएंगे, बाकी काम घर पर कर लेंगे, सुबह मिल जाएगा। सब्जी वगैरह खरीदते हुए 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंच जाएंगे शहर के एकदम किनारे गंगा तट पर बने पुश्तैनी मकान। सब्जी के परिमाण एवं गुणवत्ता से ही आंख लेगी पत्नी आज की कमाई। अभी कटहल तो महंगा मिला होगा, अरे सहजन भी आ गया क्या बाजार में? बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई हो रही होगी कम, धौल धप्पा ज्यादा, बिजली भी कहाँ रहती है, लालटेन में कितना आंख फोड़ोगे भाई? फिर तुलनात्मक रूप से तेज रोशनी वाली लालटेन तो होने चाहिए। खट खट खटाक खुट खटाक टिंग, खेती बारी का कार्यक्रम आ रहा है रेडियो पर। फली छेदक कीड़े का उपचार, पौधों में फली लगते ही ये छेदक कीड़े उसमें छेद करने लगते हैं, पूरी जीवन शक्ति ही चूस लेते हैं। उनके उपचार के लिए फली छेदक कीड़े का उपचार। आज सीजीएम साहब को उनका पेश का डांट रहा था चैंबर के पास बने रेस्ट रूम। ऐसे कैसे चलेगा, बचपन का फीस, राशन, सब्जी, मेरा नहीं आपका, कहां से व्यवस्था होगा, सबका बिल रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो जब्बर सीजीएम के चेहरे पर फली छेदक कीट लग गया था, जैसे पत्तियां भुंगरा जाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह। पिताजी बताते थे कि एक जमाना था जब सीजीएम या एडीजे के सामने खड़े होने में बड़े बड़े पुलिस कप्तानों की घिग्गी बन जाती थी। घिग्गी तो उनकी भी बंधी हुई थी, पता नहीं क्यों सीजीएम ने उन्हें तलब किया था। इंतजार में खड़े थे रेस्ट रूम के सामने, तभी पेशकार तीता चेहरा बनाए निकला, जाइए साहब बुला रहे हैं, क्या गड़बड़ किए हैं ऑर्डर शीट में? व्यंगपूर्ण मुस्कान, आप ही किए हैं ना टाइप? वह शेर की मान में थे, एंड शेर के सामने, और शेर का चेहरा बिल्कुल तना था। भंगुराहट गायब, फली छेदक कीट का उपचार हो चुका था। बताइए ना, आप ही किए हैं टाइप? जी। कितना दिन नौकरी है? जी 8 साल। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। जी, जी, जी। आप सिखाएंगे अंग्रेजी हमको? स्पेलिंग सुधारने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? जी वो ट्रेस पासिंग में डबल एस, स्लिप ऑफ पेन नहीं होता है, इसका प्रचार करने की क्या जरूरत थी? जी हमने नहीं किया। जी ज्यादा होशियार मत बनिए, गेट आउट। शेर ने सिर्फ घायल करके छोड़ दिया था। वह भंगुराए चेहरे के साथ बाहर आए। टाइपिंग की स्पीड 60 से 40 हो गई थी। उस रात विविध भारती के छाया गीत कार्यक्रम में अहमद वसी ने गम शीर्षक से गीत बनाए थे, चले भी आओ कि बड़ी उदास है रात। अहमद वसी की उदास मखमली आवाज और गमगीन करते गाने उसकी पलकों से आंसू का एक कतरा फिसल कर गिरा, जिसकी आवाज सुनी थी उन्होंने। वैसे भी जब आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही हो तो अनसुनी आवाजें भी सुनाई देने लगती। इट्स 11:15। सिरहाने रखी टॉकिंग क्लॉक का बटन टटोल कर दबाते ही आवाज है। अपने कमरे में बिछावन पर बैठे बैठे जब बोर हो जाते हैं सपन में बाबू, तो बातचीत होती है टॉकिंग क्लॉक से। रेडियो जब तक बजता रहता है तो समय का अंदाजा होता रहता है, लेकिन 10 बजे दिन से 12 बजे तक बड़ी मुश्किल हो जाती थी। किसी आती जाती आहट को पकड़ कर दाग देते हैं सवाल, कितना बजा है? अड़ोस पड़ोस का कोई बच्चा हुआ तो बता भी देता है, और अगर वे हुई तो साथ साथ कुछ सुभाषित भी। कौन ऑफिस जाना है, बैठे बैठे कितना बजा है, एक आदमी खड़ा रहेगा इनको बताने। 11 बजा है अभी। अब किसी आदमी का खड़ा रहना तो मुश्किल ही था, और बीच में झपकी आ गई तो समय की डोर हाथ से छूट का भक्काटा। कब हो गई भक्काटा पता ही नहीं चला। बाबू उस समय 8-9 साल का रहा होगा, डोर पकड़कर वह बचपन को जिंदा कर रहे थे। गंगा के ऊपर उल्टी जा रही थी पतंग, तभी रामेश्वर बाबू के बेटे ने बगल वाली छत से कप पेंच लड़ा दी, देख ही नहीं पाया। बाबू जब तक खींचे खींचे अरे धत्ते रहेगी, भक्काटा हो गया ना, रुआसा हो गया था बाबू। दिखा नहीं आपको? हाँ दिखा तो नहीं, वास्तव में नहीं दिखा। दूसरे ही दिन आंखों के डॉक्टर को दिखाते हुए आए और एक भयानक सत्य को दबाए हुए दिल में, आपके खानदान में किसी को ग्लूकोमा भी था? हाँ माँ को था मेरी। ओह, डॉक्टर ने सिर्फ अफसोस व्यक्त किया था। फिर तो आवाजों पर ही निर्भरता बढ़ती गई थी, टाइप के अक्षर धुंधले होते जा रहे थे, फाइल पढ़ना तक मुश्किल होता जा रहा था। पत्नी ने कुछ दिन पढ़ने की कोशिश की, उकता कर छोड़ दिया। सारा दिन खटो, खाना बनाओ, कपड़ा धो, बर्तन राशन झाड़ू पोछा, फिर रात को इनके लिए आंखें फोड़ो। अरे हमसे नहीं होगा कुछ, लाइए हम पढ़ दें, रामेश्वर बाबू का बड़ा बेटा कहता था। एक दीवार के आर पार आवाजें तो आवाजाही करती ही हैं, बेरोक टोक। लड़का जहीन था, ठीक पढ़ता था, जहां नहीं पढ़ पाता था सपन में बाबू अंदाज से ठीक करवा देते थे, खट खटा खट खट टेंग। पर जैसे ही 9:45 बजे न्यूज रीडर की आवाज गूंजी की लगा देता था पूर्ण विराम, रुकिए काका या न्यूज सुन ले, और खेलों का समाचार आते आते आवाज आ जाती थी दीवार की उस पार से, मंटू आ जाओ। समाचार के सिग्नेचर ट्यून पर लहराते हुए मंटू बाबू अपने घर और अंगुलियां टाइपराइटर की कीबोर्ड पर ही रखी रह जाती। खटाक, थाली टेबल पर आ गिरती थी, तब तक हड़बड़ा कर फाइलें समेटते थे, कहीं पानी वानी छलक कर गिरा तो मुवक्किल दुर्गति कर देंगे। दुर्गति तो हो ही गई थी तब तक, आज भी वही कद्दू की सब्जी और रोटी थी, लेकिन कुछ कहना मतलब नहीं तो कौन सा मीट मछली ला के धरती है जो पकाते हैं, जो रहेगा वही ना। फिर भी यही कद्दू का सब्जी वहां भाभी बनाती हैं तो हाँ, तो जाइए ना वहीं खा के आइए, बेटा तो मार खा के आया ही है चप्पल से, आप भी जाइए। भाई और भाभी, जहर उगलने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। सोचते हैं सपन में बाबू ये क्या है, फरमाइशी गानों के प्रोग्राम में चुरा लिया है तुमने जो दिल की गाने की फरमाइश थी। और आशा भोसले की चुलबुली आवाज कमरे में फुदक रही थी, पर सपन में बाबू तो आशा भोसले की गायन प्रतिभा की मौलिकता की जगह बेटे की उस मौलिक प्रतिभा को याद कर रहे थे, जब रंजू गाड़ी कहाँ है मेरी, भैया कचहरी जाने के लिए तैयार थे, क्या पता आप ही रखे होंगे कहीं, भाभी व्यस्त थी। यहीं तो रखे थे, अच्छा खोजना, यहीं होगी कहीं, बाबू कहाँ गया है, सपन में बाबू ने पूछा था पत्नी से। दोस्त लोग के साथ सिनेमा गया है। यहाँ कौन दोस्त मिल गया इतनी जल्दी, और पैसा तुमने दिया है? नहीं, कह रहा था दोस्त लोग ही ले जा रहा है, 2 घंटे के अंदर ही भैया वापस आए थे कॉलर से बाबू को पकड़े, उनका दंत कथा क्रोध प्रसिद्ध था, रास्ते से ही चप्पलों से पीटते ला रहे थे, बोल करेगा फिर इसी उम्र से। ओफ, ओफ, अरे छोड़िए छोड़िए, क्या किया है इसने, भाभी ने बीच बचाव किया, क्या किया है, भोलवा पॉकेट मार के साथ जाके घड़ी बेचाया है हिंदुस्तान वॉच में, भोलवा दोस्त हो गया अब इनका, वो तो हिंदुस्तान वॉच वाला घड़ी पहचानता था, भोलवा को सिपाही लोग का लात पड़ा तो गलगला के उगल दी सब बात, अब शर्म के मारे क्या बोलते हम, ई पापी माथा नीचा करके रख दिया। गुस्से की एक तेज लहर सपन में बाबू के दिमाग में भी उठी और चप्पल उठाकर दौड़े, अरे छोड़िए ना, बच्चा है, गलती हो गया, मारिया दीजिएगा का। पत्नी ने प्रतिभाशाली पुत्र को छत्र छाया में ले लिया था, साथ ही जहर की एक तेज पिचकारी, घर का बड़ा लोग से ही तो सीखा है, दूसरे कमरे से अदृश्य दिशा में छोड़ गई पिचकारी खटबदाकर भैया भाभी के कानों में जा। क्या बोल रही हो, होश है कुछ? हाँ खूब होश है, क्या गलत बोल। भाभी के जोर से रोने की आवाज आई तो सपन में बाबू ने उछल कर ढूंढ कर गला पकड़ लिया पत्नी का, साली टेटुआ दबा देंगे, अंटशंट बोले जा रही। शायद यही एकमात्र अवसर था जब लेजी डॉग ने पौरुष प्रदर्शन करते हुए किक ब्राउन फॉक्स को दबोच लिया था। भाभी ने रोते हुए आकर छुड़ाया था और कहा था, हम लोग का समय ही खराब चल रहा है तो सुनना ही पड़ेगा, समय खराब होने से तो हाथी के ऊपर बैठे बौने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, सबको पढ़ा लिखा के आदमी बना दिए तो कमा खा रहा है सब, किसी से मांगने गए क्या कुछ। समय खराब का निहितार्थ था भैया का सस्पेंशन जो उन पर लादा गया था, दंत कथा क्रोध के कारण झूठे गबन का मामला बना। सुबह ही सपरिवार प्रस्थान कर गए सप्तमे पर। कितने खुश होकर बेटे के जन्म की खुशी की मिठाई खिलाई थी घोषदा। घोषदा ने कहा था अपने इसी अंदाज में, अरे वाह वाह बाजी मात।
अभी आप सुन रहे थे पंकज मित्र की लिखी कहानी जिद्दी रेडियो। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।